हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 301। अक्षत तैयार हो गया था, परंतु वो नैना के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। नैना अभी भी चेंजिंग रूम में थी। उसे ड्रेस चुनने में हमेशा ही अधिक समय लगता था, इसीलिए ज्यादातर अक्षत उसके लिए ड्रेस अपने डिज़ाइनर से बनवा लेता था। किंतु इस बार अचानक ही उन्हें इस पार्टी में जाना पड़ रहा था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाया था और नैना अपने वार्डरोब से ही ड्रेस चुन रही थी। नाइट पूल पार्टी के लिए ड्रेस चुनने में नैना को थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो आज तक ऐसी किसी पार्टी में नहीं गई थी। ये उसकी ज़िंदगी में पहला अवसर था और वो भी अक्षत की वजह से उसके साथ जा रही थी। नहीं तो उसके अभी इतने संपर्क नहीं थे कि कोई उसे वहां आमंत्रित करता। इसलिए उसने एक लॉन्ग वन पीस ड्रेस निकाली जो स्काई ब्लू और गोल्डन कलर की थी। उसका ऊपरी भाग गोल्डन था और नीचे फ्रॉक जैसी फैली हुई स्काई ब्लू कलर की थी। नीचे से कटी हुई और झालर जैसी लग रही थी। उसे ये ड्रेस पूल पार्टी के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगी। उसने इसके साथ गोल्डन हील्स पहनी, बड़े इयररिंग पहने और खुले बालों में रात के हिसाब से शिमर मेकअप किया। जब वो वहां से बाहर निकली तो अक्षत की नज़रें उस पर से नहीं हटी और वो उसे देखता ही रह गया। नैना अभी भी अपनी ड्रेस में लगी हुई थी। वो उसे ऊपर से और नीचे से ठीक कर रही थी और अपने आप को देखते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? ये ठीक है ना? मैंने पार्टी के हिसाब से सही ड्रेस तो चुनी है ना? बताओ अक्षत, अगर ठीक नहीं है तो मैं बदल। वो अपना वाक्य पूरा कर पाती इससे पहले ही अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करके दोनों हाथ उसके गालों पर रखकर आंखों में देखते हुए बोला, किस पर बिजली गिराने का इरादा है आज? हम तो पहले ही तुम्हारे प्यार में घायल हैं और उस पर से ये सब? यू लुक रियली गॉर्जियस। अक्षत की तारीफ सुनकर नैना को थोड़ी शर्म आई और उसने हल्के हाथ से अक्षत को पीछे धकेलते हुए कहा, सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ क्या? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं खुद को। मुझे लगा कि काफी लेट हो रहा है और तुम 2-3 बार आवाज़ भी दे चुके थे। नैना के हल्के धक्के से अक्षत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसी तरह नैना की कमर में अपना एक हाथ डाले उसे अपने करीब खड़ा था और अपने दूसरे हाथ की पहली उंगली नैना के गाल पर फिराते हुए बोला, ये लेट वेट क्या होता है? अब तुमने इतना अच्छा तैयार होना था तो इतना समय तो लगेगा ही। आई नो दैट। और वैसे भी कौन सी बहुत बड़ी प्रेसिडेंट की पार्टी है कि लेट हो गए तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। आराम से चलेंगे। वैसे सच कहूँ तो अब तो मेरा जाने का नहीं, कुछ और ही करने का इरादा है। नैना उसकी बातें सुनकर उससे नजरें नहीं मिला पाई। इधर उधर देखकर उसने अक्षत को हल्का सा डांटते हुए कहा, स्टॉप इट अक्षत, जस्ट स्टॉप जोकिंग अराउंड मी। अक्षत फिर से उसी तरह सिडक्टिव आवाज में बोला, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। बस तुम परमिशन दो तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। और रहने दो ये पार्टी वार्टी, कौन सी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? नैना ने अक्षत का हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट अक्षत, मैं ऐसी किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दे रही। और चलो ना, अगर मैं महत्वपूर्ण हूँ तो इतना समझ लो कि मेरा ही मन है उस पार्टी में जाने का। चलो ना, हम कितने दिन से साथ में कहीं नहीं गए, मेरा मतलब है किसी पार्टी में। और मुझे भी बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा ऐसी पार्टी में, क्योंकि आगे तो जाना ही पड़ेगा ना। अक्षत ने भी आखिर उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है चलो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन यार कम से कम एक किस तो कर ही सकते हैं ना। वैसे भी तुम इतनी ज्यादा आकर्षक लग रही हो, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही तुम पर से। और मैं ये सोच रहा हूँ, वहाँ पार्टी में पता नहीं कितने लोगों की नज़रें तुम पर ही टिक जाएंगी और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात बोलते हुए अक्षत का मुंह बन गया वो सब कुछ सोचकर। और नैना ने उसे देखा तो उसे अक्षत इस वक्त बहुत ही प्यारा लगा। उसने अपना एक हाथ अक्षत की गाल पर रखकर कहा, अक्षत, तुम्हें पता है तुम खुद कितने प्यारे लग रहे हो इस वक्त, और तुम्हें भी तो इतनी लड़कियां देखती हैं, लेकिन गेम पोर्टल नहीं है ना? हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं ना? हमारे लिए यही महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना? नैना के इस तरह समझाने पर उसकी बात का मतलब समझते हुए अक्षत ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वे दोनों एक साथ वहाँ से श्वेता के घर पार्टी के लिए निकल गए। घर पास में ही था, सिर्फ 2 ब्लॉक दूर, इसलिए वे दोनों कार से नहीं बल्कि हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पैदल ही अपने बंगले से निकल गए। और सुरक्षा गार्ड थोड़ा सा दूर उनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि वे अक्षत को बिना कार के और बिना सुरक्षा के जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। दूसरी तरफ सुनैना बहुत थकी हुई घर आई और उसने देखा कि लिविंग रूम में स्वीटी ने काफी कुछ फैला रखा था। बहुत सारे पेपर, कुछ छोटे बड़े कपड़े, फाइलें और उसके हाथ में एक छोटी हैंडी स्विचिंग मशीन भी थी। सुनैना पहले तो आराम से सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गई। उसे देखकर स्वीटी एकदम से अपना सामान समेटते हुए बोली, सॉरी भाभी, ये सब मैंने यहाँ पर ही फैला लिया। मैं बस अभी अपने रूम में ले जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि आप अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। इतना लेट हो गया आज आपको। स्वीटी को अपना सामान समेटते हुए देखकर सुनैना ने उसे समझाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, रहने दो, तुम्हारा काम है, तुम यहाँ पर भी कर सकती हो। स्वीटी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आज कॉलेज गई थी और फिर वहाँ से घर जाना पड़ा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेने, और वहाँ पर फिर अरुण से बात करने में इतना समय हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे भी काफी समय बाद मैं वहाँ गई थी। सच कहूँ तो वहाँ जाने का मन नहीं होता, पर मजबूरी में जाना पड़ा। उसकी बात पर स्वीटी भी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ भाभी, मैं बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी अपने घर जाने का मन नहीं होता। मुझे यहाँ पर आपके और भैया के साथ बहुत अच्छा लगता है और अपनापन भी महसूस होता है। साथ ही भैया आप कितने अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और 2-3 दिन में मेरा हाल चाल और रूटीन भी पूछ लेते हैं। सुनैना ने भी उसे समझाया और फिर बात बदलते हुए कहा, हाँ, जब घर वाले ही दुख देते हैं तब इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं स्वीटी, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो और हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट ये सब कब तक पूरा हो जाएगा? सुनैना ने जानबूझकर बात बदली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि स्वीटी इन सब बातों को लेकर तनाव में आए। थोड़ी देर स्वीटी से बात करने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ी, परंतु उसे वहाँ आदित्य के होने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अपने रूम में जाकर कपड़े बदलने के बाद वो सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ी, परंतु आदित्य वहाँ पर भी नहीं था। आदित्य को घर में ना पाकर सुनैना अपने आप से बात करते हुए बोली, अभी तक ऑफिस से नहीं आया क्या आदि? इतना समय लग रहा है तो कम से कम मुझे बता तो देता। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के लगभग 9 बजने वाले थे। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे आदित्य का नंबर डायल कर दिया, जो दूसरी तरफ से रिसीव नहीं हुआ। उसे पता था कि आदित्य का फोन से इतना लगाव नहीं है और वो अक्सर ही फोन साइलेंट पर रखता है या फिर इधर उधर रख जाता है। इसलिए मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए सुनैना ने अपनी तरफ से वो कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर कुछ सोचकर उसने रवि का नंबर डायल किया।
रवि से बात करके सुनैना को पता चल गया कि आदित्य अभी कुछ मिनट पहले ही ऑफिस से निकला है। ये बात पता चलते ही सुनैना थोड़ी रिलैक्स हो गई, क्योंकि ऑफिस से घर तक आने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है। इसलिए अपने कपड़े बदलकर वो आराम से फोन चलाती हुई अपने रूम में ही बैठ गई, क्योंकि रात के डिनर के लिए वो आदित्य का इंतजार कर रही थी। उसे भले ही थोड़ी भूख लगी हो, परंतु वो अकेले डिनर नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ पूरे रास्ते आदित्य की सलाह के बारे में सोचता हुआ अनय भी रोज की तरह ही अपने समय पर घर पहुंचा। उसे लगा कि रोज की तरह मनस्वी शायद अभी घर पर नहीं होगी, क्योंकि वो ज्यादातर उससे लेट ही घर वापस आती है। इसलिए वो आराम से घर के अंदर आया। आज मनस्वी की माँ भी घर पर नहीं थी तो उसे थोड़ा खाली खाली और बुरा लगा, लेकिन फिर उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और सीधा अपने कमरे की तरफ पड़ गया, क्योंकि उसका खाना खाने का भी मन नहीं था। अनय अपने रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका रूम खुला हुआ है और मनस्वी वहां बेड पर पेट के बल लेटी हुई फोन में कुछ कर रही है। उसने मनस्वी को इस तरह से बहुत कम ही देखा था और इस वक्त इस तरह से लेटी हुई वो बहुत ही रिलैक्स लग रही थी, जैसी वो ज्यादातर नहीं लगती। हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहती है, या फिर हाइपर होकर काम करती रहती है, या किसी से कॉल पर बात करती रहती है। इतने दिनों से मनस्वी को देखते हुए अनय को तो यही लगने लगा था कि ये लड़की शायद कभी सामान्य रूप से रिलैक्स रह ही नहीं सकती। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो अनय ने कभी नहीं सोचा था मनस्वी को लेकर, लेकिन आज सुबह उसके कन्फेशन के बाद से तो अनय कुछ ज्यादा ही सदमे में था और उसका मनस्वी का सामना करने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को समझाया, नहीं, मैं क्यों पीछे हटूं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, दिमाग तो इसका ही खराब हुआ है। तो फिर, और वैसे भी पता नहीं ये अभी भी मेरे कमरे में क्या कर रही है, अपने कमरे में वापस क्यों नहीं गई? अब तो मम्मी भी यहाँ पर नहीं है, चलो इसी से ही पूछ लेता हूँ। अपने मन में इतना बोलकर अनय ने अपने कमरे के अंदर कदम रखा। दरवाजे से आती हुई किसी के कदमों की आहट सुनकर मनस्वी ने मोबाइल स्क्रीन से नजरें हटाकर उस तरफ देखा और उसे शायद पहले से ही पता था कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि अनय ही होगा। दरवाजे से अंदर आते हुए अनय को देखकर मनस्वी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, इतना लेट कैसे हो गए? तुम तो आज ऑफिस भी नहीं आए थे, कहाँ गए थे? अनय ने पूरे रवैये से उसकी बात का जवाब दिया। आज से पहले तो कभी नहीं पूछा तुमने मुझसे ये सवाल, तो फिर आज क्यों? और वैसे भी मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि तुम कौन सी मुझे कुछ भी बताती हो, और बताना तो दूर की बात है, मैं तो तुमसे कोई सवाल भी नहीं करता। इतना बोलकर वो कमरे के अंदर आ गया और बेड के सामने रखे सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। क्रमशः